अधमाधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री उपदेशामृत की जय श्री रूप गोस्वामी पाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय हरे कृष्णा ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वशे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सब भगवद गीता प्राय समाप्त कर चुके हैं। कहां तक पहुंचे हैं आप सब? 15वां अध्याय तक। और भक्ति रसामृत सिंधु की शुरुआत नहीं हुई अभी तक। तो अब आने वाले 8-10 दिनों में या हम उपदेश अमृत इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की चर्चा करेंगे जो कि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे हम आमुख में देखेंगे, विशेष करके नवदीक्षित भक्तों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश यहां इस ग्रंथ में पाए जाते हैं। और हम सबको समझना चाहिए कि हम नवदीक्षित ही हैं। सच्चे वैष्णव क्या हैं, कौन हैं, ये तो बहुत गहरा विषय है। वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। हम बस वैष्णव बनने की तैयारी में हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वैष्णव बनने के लिए। तो हम सब के लिए ये उपदेशामृत बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति शास्त्र में जो 4 किताब पढ़े जाते हैं उनमें से 2 किताबों की रचना श्रील रूप गोस्वामी ने की है, भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उपदेशामृत। हालांकि इसमें केवल 11 श्लोक हैं। और भक्त साधारण सोचते हैं अरे उपदेशामृत तो बहुत ही मामूली ग्रंथ है, लेकिन मामूली नहीं है। जैसे हम आगे चल के देखेंगे इसमें से बहुत ही गूढ़ तत्व है। शुरुआत से लेकर अर्थात वैधि भक्ति की अवस्था से लेकर प्रेम भक्ति की अवस्था तक इस ग्रंथ के अंदर ये सारे विषय हैं। तो पहले थोड़ी देर के लिए श्री रूप गोस्वामी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। श्री रूप गोस्वामी के बारे में इतना कुछ शास्त्रों में है कि यहां विस्तार में चर्चा करने के लिए संभव नहीं होगा। केवल संक्षेप में कुछ कहने का प्रयास करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, इसलिए गौड़ीय वैष्णव रूपानुग कहलाते हैं। रूप अनुग अनुग रूप गोस्वामी का अनुगमन करने वाले रूपानुग। हालांकि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे और हालांकि चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में अनेक ऐसे महान भक्त हुए जो भी नित्य पार्षद हैं भगवान के, फिर भी गौड़ीय वैष्णवों को रूपानुग कहा जाता है क्योंकि ये विशेष योग्यता, ये विशेष शक्ति प्रचार करने की, एक संप्रदाय को सही सिद्धांतों पर स्थित करने की ये शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से रूप गोस्वामी को प्रदान की। चैतन्य चरितामृत में बहुत कुछ है, लेकिन हमने सोचा कि बस थोड़ा ही कुछ पढ़ेंगे। रूप गोस्वामी के तिरुभाग तिथि पर प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने 4 दिन लगातार रूप गोस्वामी की कथा की थी। आप में से कई भक्तों ने सुना होगा। तो ऐसे मंदिर में हम तो सुनते जाते हैं हर साल जब कोई महत्वपूर्ण उत्सव होता है, इसलिए विस्तार में यहां चर्चा नहीं करेंगे। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय में, जिस अध्याय में रूप शिक्षा आरंभ होती है, चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करते हैं, उस अध्याय की शुरुआत में ही सबसे पहले ही श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं, वृंदावनीयां रसकेलिवार्तां कालेन लुप्तां निज शक्तिमुत्कः संचार्य रूपे व्यतनोत् पुनः स प्रभुर्विधौ प्राग्यवलोक सृष्टिम्। वृंदावनीयां रसकेली वार्ताम, तो वृंदावन के जो रसकेली की वार्ता है, रसकेली मतलब यहां के जो मधुर लीलाओं के का वर्णन जो है, कालेन लुप्तम, काल के द्वारा लुप्त हो चुका था, मतलब लोगों को ख्याल नहीं था, लोगों को इतना पता नहीं था, सब भूल चुके थे। यहां भगवान के कौन से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं, कहां भगवान ने विभिन्न लीलाएं की थीं, सब भूल चुके थे लोग, साथ साथ में भगवान की लीलाओं को भी भूल चुके थे। लेकिन भगवान ने निज शक्तिम उत्कह, बड़े उत्कह मतलब बड़े ही आतुरता से अपनी शक्ति को प्रदान करना चाहा, संचार रूपे, रूप गोस्वामी में संचारित कर दिया अपनी निजी शक्ति, ताकि ये जो वृंदावन की लीलाएं हैं ये पुनः प्रकट हो जाए सारे दुनिया के लाभ के लिए। संचार्य रूपे व्यतनोत् पुनः सह प्रभुर विधौ प्राग इव लोक सृष्टिम। विधि मतलब ब्रह्मा जी का और एक नाम है। तो जिस प्रकार से प्रभु ने, वही प्रभु जो अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था और सारा ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित किया था, तो उसी प्रकार से यहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को ऐसे शिक्षा दी थी। हम मंगलाचरण में यह भी प्रार्थना करते हैं, रूप गोस्वामी के बारे में षड गोस्वामियों का वर्णन करते ही रहते हैं। हमारे मंगलाचरण में तो षड गोस्वामियों का वर्णन भी आता है, साथ साथ में हम ये भी कहते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। इस शब्द का अर्थ क्या है इस श्लोक का, कि रूप गोस्वामी वो हैं जिन्होंने कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक इच्छा को जान लिया है, हृदय की बात जान ली, उनकी मन की इच्छा, मनोभीष्टम, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक इच्छा को, उनके मन की बात को यहां स्थापित कर ली है। तो ऐसे श्री रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे इसी 19वें अध्याय में ही कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत सब शिखाये लो प्रभु भागवत सिद्धांत। प्रयाग में जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट पर उपदेश किया लगातार 10 दिन, तो इन विषयों के ऊपर उन्होंने उपदेश किए, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, और केवल प्राथमिक ज्ञान नहीं, प्रांत, प्रांत मतलब अंतिम सीमा, तो इन विषयों के अंतिम सीमा तक उनको उन्होंने ज्ञान दिया। श्रव सिखाई लो प्रभु भागवत सिद्धांत, और ये जो चीजें सिखाई हैं कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, ये श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के अनुसार सिखाएं। तो महाप्रभु के शिक्षाएं जो हैं जिन्होंने कि उनको उन्होंने जो रूप गोस्वामी को दी थी वो श्रीमद् भागवत पर आधारित है। रामानंद पाशे जो तो सिद्धांत सुनीला, रूपे कृपा करुता है श्रव संचारीला। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने तत्व सुने थे, सिद्धांत सुने थे रामानंद राय से गोदावरी के तट पर, उन्हीं सिद्धांतों को महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को पुनः सिखला दिया। वैसे तो रामानंद राय को भी तो भीतर से महाप्रभु ने ही प्रेरित किया था, केवल अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए उन्होंने रामानंद राय को ये श्रेय दे दिया। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण कोरिला। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, उनके हृदय में शक्ति का संचार कर दिया, विशेष शक्ति का, क्या करने के लिए? सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करिला, समस्त तत्वों का निरूपण करने के लिए उनको प्रवीण बनाया चैतन्य महाप्रभु ने। तो हम समझ सकते हैं कि जब श्री रूप गोस्वामी कुछ कहते हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु के कहने के बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने जो भी किया है वो केवल चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शक्ति जो प्राप्त हुई है उसके अनुसार किया है, और वो बुद्धि, वो शक्ति, वो ज्ञान शास्त्रों को अध्ययन करके, शास्त्रों का सार, उनका निचोड़ निकालने के लिए, उनका सही तरह से निरूपण करके, सही सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए जो शक्ति है वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को प्रदान की थी। ऐसे आगे भी चैतन्य चरितामृत में बहुत कुछ है, लेकिन आने वाले 10-11 दिनों में हम उपदेशामृत के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, चैतन्य चरितामृत के ऊपर नहीं, इसलिए चैतन्य चरितामृत की कथा यहीं समाप्त करते हैं। तो रूप गोस्वामी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, इनमें से केवल जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनका वर्णन यहां पे है, उनका उल्लेख है यहां पर। भक्ति रसामृत सिंधु जो कि आप सब पढ़ने वाले हैं भक्ति शास्त्र में आगे चल के, विदग्ध माधव, ललित माधव, उज्ज्वल नीलमणि, दान केली कौमुदी, पद्यावली, स्तवमाला, राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका, लघु और बृहत, ये 2 ऐसे किताबें उन्होंने लिखी, मथुरा महिमा, लघु भागवतामृत, और ऐसे कई और ग्रंथ भी हैं जैसे कृष्ण जन्म तिथि विधि, हंस दूत, उद्धव संदेश, आख्यात चंद्रिका, नाटक चंद्रिका, ऐसे और कई ग्रंथ हैं, लेकिन हमने केवल महत्वपूर्ण ग्रंथों को यहां चुन के इनका उल्लेख किया है। हाँ, कोई घुमाएंगे क्या? आप में से कोई, किसी को थोड़ी बहुत सेवा करनी होगी ये घुमाने के लिए, ऐसे पलटा देंगे। तो कुछ जानकारी हमने सोचा कि क्योंकि हम वृंदावन में बैठे हैं तो रूप गोस्वामी कब आए, यहां कितने वर्ष रहे, थोड़ा इतिहास संक्षेप में केवल, और बहुत कुछ है ऐसे देखा जाए तो, परंतु केवल संक्षेप में। हाँ, आप में से कोई पढ़िए, आविर्भाव चैतन्य महा रूप गोस्वामी का कब हुआ?
14 से 9
1489 में, और आगे महाप्रभु का राम केली में प्रथम दर्शन कौन से वर्ष में?
1514
हाँ, तो जिस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने प्रथम बार महाप्रभु का दर्शन किया राम केली में, उस समय श्री रूप गोस्वामी की आयु 25 वर्ष की थी, और उस समय वो मंत्री थे। तो समझ लीजिए कि ऐसे छोटी उम्र में वो राजा के मंत्री भी बन चुके थे। और आगे चल के जब महाप्रभु का दर्शन हुआ, वो सब कुछ छोड़ के जाना चाहते थे, तो उन्होंने तैयारी की और आगे चल के फिर वो प्रयाग की ओर चल पड़े। और फिर प्रयाग में शिक्षा या उपदेश चैतन्य महाप्रभु उनको दी। कब दी?
1516
में। उस समय उनकी आयु क्या थी?
27
वर्ष। तो फिर प्रयाग से वृंदावन की ओर रूप गोस्वामी चल पड़े। वृंदावन में वो रहे। इस समय वो अपने छोटे भाई अनुपम या श्री वल्लभ के साथ में थे। वृंदावन में एक वैष्णव रहा करते थे जिनका नाम था सुबुद्धि राय। पहले ही यहां वृंदावन में आ चुके थे। उन्होंने रूप गोस्वामी को द्वादश वनों में घुमाया, भ्रमण कराया, तीर्थ यात्रा करा ली, और फिर प्राय एक महीना यहां रहकर रूप गोस्वामी फिर से दक्षिण की ओर चले गए। उस समय तक सनातन गोस्वामी आ गए थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर लिया, लेकिन जब महाप्रभु ने कहा कि रूप गोस्वामी वहां गए हैं और सनातन गोस्वामी गए, लेकिन रूप गोस्वामी उस समय वृंदावन से दूसरे रास्ते से वापस दक्षिण की ओर चल पड़े थे, इसलिए दोनों भाइयों की मुलाकात नहीं हुई। तो प्रयाग में शिक्षा प्राप्त करने के बाद रूप गोस्वामी पहली बार वृंदावन गए थे, फिर लौट के गए, फिर जगन्नाथपुरी गए, और कई ऐसे तारीख हैं जिनका उल्लेख हमने नहीं किया है। जगन्नाथपुरी में रहे और फिर से लौट के महाप्रभु के आदेश के अनुसार वृंदावन आए। वृंदावन आके यहां रहने लगे और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, गोविंद देव का प्राकट्य। कौन से वर्ष में हुआ?
1535।
उस समय रूप गोस्वामी की आयु क्या थी?
46
वर्ष की थी। तो सारे वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना थी गोविंद देव का प्राकट्य। और उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना समाप्त कर ली महाप्रभु ने। कौन से वर्ष में?
1545।
और उस समय उनकी आयु क्या थी?
56
वर्ष की थी। और फिर दुर्भाग कौन से वर्ष में हुआ? 1564। और उस समय उनकी आयु थी 75 वर्ष। तो कुल मिलाकर कितने वर्ष रूप गोस्वामी वृंदावन में रहे? आप में से जो गणित में अच्छे हैं जल्दी कर लीजिए। प्राय 50 साल प्राय। तो इतने साल यहां रूप गोस्वामी रहे। उनके संग में सनातन गोस्वामी थे और अन्य गोस्वामी गण भी थे। नहीं नहीं, सकाप शकाप नहीं है हमारे साथ। हमारा आधुनिक जो कैलेंडर है उस हिसाब से। हाँ, सॉरी। हाँ, शकाब्द नहीं है। बिल्कुल। 3 साल का अंतर दोनों में। सनातन तो बड़े थे ना। सनातन गोस्वामी तो रूप गोस्वामी से बड़े थे आयु में। दोनों के अंदर केवल 2 साल का अंतर था मेरे ख्याल से, या पता नहीं कितना, देखना होगा। 2-3 साल का हुआ, लगभग उसी उम्र के हुए होंगे। तो खैर ये श्री रूप गोस्वामी की के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख यहाँ पे किया हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो संप्रदाय है वो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के ऊपर आधारित है और ये संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय एक पांचवें संप्रदाय के समान है, हालांकि मध्व संप्रदाय से जुड़ा हुआ है ये संप्रदाय, फिर भी सिद्धांतों में थोड़ा कुछ भेद होने के नाते एक दृष्टि से देखा जाए तो ये पांचवा ही संप्रदाय है। परंतु शास्त्रों में तो कहा हुआ है कि चार संप्रदाय हैं वैष्णव संप्रदाय, तो महाप्रभु ने अपने आप को भी इस मध्व संप्रदाय से जोड़ लिया क्योंकि उनके गुरु थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी और माधवेंद्रपुरी के गुरु थे लक्ष्मीपति तीर्थ जो कि मध्व संप्रदाय के आचार्य थे। इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जिसमें हम सब आए हैं, हम सब जिस संप्रदाय में हम सब ने दीक्षा ली है उसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। ये ब्रह्मा जी से आरंभ हुआ, मध्वाचार्य को इस परंपरा में है, साथ साथ गौड़ीय मतलब बंगाल के या चैतन्य महाप्रभु से संबंधित। तो इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य रूप गोस्वामी हैं। तो ये हमारा आधार है। हाँ जी, मध्वाचार्य है, मध्व संप्रदाय ब्रह्म मध्व संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य हैं। हम भी इसी संप्रदाय में आते हैं लेकिन हमारी शाखा कुछ अलग है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में माधवेंद्रपुरी से वो शाखा निकली। ठीक है, आप में से कोई घुमाएंगे, आप में से किसी को बीच बीच में कष्ट करना होगा। तो आइए अभी हम आमुख पढ़ लेते हैं। आप में से और जो रूप गोस्वामी के बारे में पढ़ना चाहते हैं प्रभुपाद के शब्दों में, आप चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में जो दसवा स्कंद है उसके अंदर आप पाएंगे जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का वर्णन है 84 नंबर श्लोक में और मध्य लीला में भी 175 से लेकर 220वें श्लोक तक रूप गोस्वामी की लीलाओं का वर्णन है और ऐसे अन्य कई जगह हैं, लेकिन कम से कम इन दो प्रसंगों को आप पढ़ सकते हैं। तो मैं ऐसे करेंगे कि आप में से कोई ये पढ़ते जाइएगा, अलग अलग भक्तों को चांस मिले पढ़ने के लिए और फिर बीच बीच में हम रुकेंगे, कोई चर्चा करेंगे, साथ साथ में फिर इसका सार जो है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो सर्वप्रथम किताब में से हर एक लाइन हमें पढ़ना चाहिए। कभी कभी बीच बीच में ऐसे एक आध महत्वपूर्ण वाक्य मिल जाते हैं जो बहुत ही हमारे लिए स्मरणीय होते हैं। तो हाँ जी, आमुख से अलग अलग भक्त आप सब पढ़िएगा, आप पढ़ेंगे। हाँ, तो आमुख पढ़ा जा रहा है, आपके पास तो किताबें हैं तो कृपया किताब खोल के रखिएगा, अभी हम आमुख पढ़ रहे हैं।
श्री गुरु गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चेतन महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के छह गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, रूप रघुनाथ पदे भये वे आकुति तबे हम बुझावे ये युगल। जब जब मैं गोस्वामियों द्वारा उगत साहित्य को समझने का उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा प्रसाद कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा।
ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। श्री रूप गोस्वामी षड गोस्वामियों में से प्रमुख हैं और जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं वो सब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। महाप्रभु के अनुयायियों में से षड गोस्वामी जो कि उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि जगन्नाथपुरी में रामानंद राय थे, सार्वभौम भट्टाचार्य थे, स्वरूप दामोदर थे और इतने सारे महत्वपूर्ण भक्त थे, लेकिन जहां तक प्रचार के आंदोलन का प्रश्न आता है तो इस आंदोलन में षड गोस्वामियों का महत्व अधिक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, उन्होंने बहुत प्रचार किया, मंदिरों की स्थापना की, यहां तीर्थ स्थानों को प्रकट कराया, वैष्णव आचार, वैष्णव सिद्धांत आदि का निरूपण उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया, विस्तार से किया। इसलिए षड गोस्वामी ये चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में से प्रमुख माने जाते हैं। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं कि इन षड गोस्वामियों के साहित्य को पढ़ के ही हम राधा कृष्ण तत्व या राधा कृष्ण लीला को हम समझने में समर्थ हो जाएंगे। हाँ, आगे पढ़िएगा। अब चैतन्य महाप्रभु की बात आएगी। षड गोस्वामी की चर्चा करने के बाद अब रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान कृष्ण के समस्त प्रकार के लाभों में सबसे वर्णन है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीला। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए।
ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण हैं जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं। वो किस लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर? नहीं, सबसे पहले यहाँ पे किस कारण से आए हैं? मानव समाज को कृष्ण विज्ञान प्रदान करने के लिए आए हैं। तो कृष्ण विज्ञान या कृष्ण लीला में सर्वोच्च लीला कौन सी है भगवान की? जो उनकी गोपियों के साथ लीला है वो सबसे ऊंची लीलाएं, सर्वोच्च लीलाएं मानी जाती हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी जो कि सर्वश्रेष्ठ गोपिका हैं उनके भाव को स्वीकार करके आए हैं। तो पहले प्रभुपाद जी ने षड गोस्वामियों का वर्णन किया, फिर चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया और आगे दोनों का संबंध, षड गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का संबंध। हाँ जी,
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को समझने तथा उनके पदचिन्हों का अनुसरण करने के लिए हमें षड गोस्वामियों श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजी गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का गंभीरतापूर्वक अनुसरण करना चाहिए।
हाँ, तो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को समझें और इन उपदेशों को अपने जीवन में अमल करें, उनको उतारें। तो चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को, उनके आंदोलन को अगर हमें समझना है, इस आंदोलन में शामिल होना है और महाप्रभु के पदचिन्हों में अगर हमें चलना है तो हमें षड गोस्वामी के पदचिन्हों में चलना होगा, षड गोस्वामियों के शिक्षाओं को समझना होगा, तब आगे महाप्रभु की बातें हम समझ पाएंगे। हाँ, आगे।
श्री रूप गोस्वामी समस्त गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्गदर्शन करने के लिए हमें श्री उपदेशान प्रदान किया जिससे हम उसका पालन कर सकें। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शास्त्रम नाम से आज को छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशा में प्रदान किया जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके।
ठीक है, तो रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत क्यों दिया है?
वैष्णव
पहले क्या बताते हैं? सबसे पहले लाइन में क्या कहते हैं?
स्वयं उसका पालन कर सकते,
हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। किस तरह के कार्य हमें करने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस मार्ग निर्देशन करने के लिए रूप गोस्वामी ने हमें ये उपदेशामृत दिया है, ठीक है ना? रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, तो रूप गोस्वामी केवल महाप्रभु के संदेश को आगे दे रहे हैं, हमें प्रदान कर रहे हैं। और आगे चल के फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सकें। तो केवल हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हाँ ठीक है चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ऐसे सिखलाया था, अच्छी तरह से हम जान लिए, केवल जानना, इसके ऊपर प्रवचन करना या बड़ा विद्वान बनना षड गोस्वामियों के साहित्य में, केवल ये हमारा उद्देश्य नहीं है। इस ज्ञान को विज्ञान के रूप में परिवर्तित करना है, अर्थात हमें शुद्ध वैष्णव बनना है, कृष्ण प्रेमी बनना है। शुद्ध कृष्ण प्रेमी बनना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है। हाँ जी आगे पढ़िए। लेकिन इन सब चीजों के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है, कहां से शुरुआत होनी चाहिए, यहां प्रभुपाद जी आगे यही कहते हैं।
मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में रजों तथा तमोगुणों में मग्न रहता है। उसे श्री रूप गोस्वामी के उद्देश्यों पर चलते हुए अपने आप को सत्वगुण के पद पर आना चाहिए, तभी आगे उन्नति संबंधी प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन और इंद्रियों के को वश में करने के न करने से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। ये प्राथमिक कदम हमें उठाना चाहिए, अन्यथा प्रगति संभव नहीं है। मन और इंद्रियां जब हम संयम में नहीं कर सकते हैं तो हम तरह तरह के पाप कार्य करते हैं, और पाप अर्थात राजसिक और तामसिक कार्य होते हैं। जिस व्यक्ति का मन रजगुण और तमगुण से अधिक प्रभावित हो जाता होता है वो भगवान की बातें समझने में पूरी तरह से समर्थ नहीं होता है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारा मन सात्विक होना चाहिए, हमें सत्वगुण का अनुशीलन करना चाहिए। सत्वगुण का अनुशीलन करने के लिए हमें उन कार्यों को त्यागना चाहिए जिनसे कि हमारे चित्त में रजगुण और तमोगुण का प्रभाव पड़ जाए। इसलिए तो हम ये चार नियमों का पालन करते हैं। चार नियम का पालन करना ये अपने आप में आध्यात्मिक कार्य नहीं है। क्या गोलोक वृंदावन में कोई बड़ा विषय है चार नियम का पालन करना? कोई इनके बारे में बात करता है गोलोक वृंदावन में? गोलोक वृंदावन में कोई महत्व का विषय नहीं है ये, परंतु यहां इस भौतिक जगत में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव इतना अधिक है, सबके मन के ऊपर इतने ये गुण छा गए हैं कि हम आध्यात्मिक तत्वों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उनका पचन नहीं होता ठीक से। अगर ठीक से इनको स्वीकार करना है, इस पथ में चलना है, तो मन को सात्विक बनाना आवश्यक है। तो मन को सात्विक बनाने के लिए मन और इंद्रियों को वश में कर लेना है। इंद्रियों और मन को वश करना ये अपने आप में कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है। केवल तपस्वी होना, یا اپنے اندریوں کو سیم میں لانا یہ اپنے آپ میں ہمارے لیے کوئی مہتوپورن چیز نہیں ہے. کیول اس وجہ سے کہ بھگوان کی سیوا اچھے ڈھنگ سے ہو جائے ہم اندریوں کو اور من کو وش میں کرنا چاہتے ہیں. ستو گن میں استھت ہونے سے ویکتی بڑے اچھی طرح اس کا من شانت رہتا ہے. بھگوت گیتا میں آپ نے پڑھا ہوگا ستو گن رج گن اور تم گن کے لکشن, یہاں ابھی چرچا نہیں کریں گے, لیکن ستو گن میں آنے سے ویکتی دیوی گیان کو سویکار کر سکتا ہے کیونکہ اس کا من شانت رہتا ہے. وچلت چت میں آدھیاتمک جیون میں پرگتی کرنا سمبھو نہیں ہوتا. اگر کوئی ویکتی رجگن اور تمگنی ہے تو اسے اس پتھ میں آگے بڑھنا مشکل اس لیے ہوگا کہ وہ استھرتا پراپت نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, یہ بھکتی یہ کرپا کا پتھ ہے اور کسی ویشنو کی کرپا سے بھلے ہمیں بھکتی مارگ میں پرویش بھی مل جائے, پرنتو آگے اگر ہمیں چلنا ہے تو ہمیں سدرڑ ہونا پڑے گا. تو سدرڑتا تب آئے گی جب ہم ستوگن میں استھت ہوں گے. رجگن اور تمگن کا جب پرادھانیہ ہوگا ہمارے چت میں تو دڑھتا بھکتی میں نہیں آ سکتی ہے. اس لیے یہاں پر پرپا جی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ستوگن میں رہنا چاہیے. ستوگن میں رہنے کا مطلب ہے من اور اندریوں کو وش میں کرنا چاہیے. پربھوپا جی ایک جگہ ایک ادھارن دیتے ہیں کہ سیدھے بھگوان کے دھام میں نہیں پہنچا جا سکتا ہے, ہمیں یہاں ابھیاس کرنا پڑتا ہے. دھیرے دھیرے سے کرمشہ جو نمن شرینی یا رجگن تمگن کے پربھاو ہیں ان کو مٹا کر ہم ستوگن میں استھت ہو کر پھر آگے جا سکتے ہیں. جس پرکار اگر ہمیں کوئی ہوائی جہاز لینا ہے تو ہم ہوائی اڈے پر جاتے ہیں, ہوائی اڈے میں جا کر پھر آسانی سے ہم ہوائی جہاز میں چڑھ سکتے ہیں, لیکن ہمارے گھر کے چھت سے ہم سیدھے جہاز میں ہوائی جہاز میں چڑھنا چاہیں تو وہ سمبھو نہیں ہے. حالانکہ کوئی ہیلی کاپٹر ہو سمجھ لیجئے اور کوئی رسی بھی اوپر سے پھینک دیتا ہے پھر ہمیں چڑھنا بہت مشکل ہے. ہوائی اڈے سے جانا سب سے آسان راستہ ہے. ٹھیک اسی پرکار سے جب ویکتی ستوگن میں استھت ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوائی اڈے پہ جا رہا ہے, جس سے گولوک ورنداون میں جانے والی ہوائی جہاز آ سکتی ہے. ہم اپنے آپ کو ستوگن میں استھت نہیں کریں گے تو پھر اس ہوائی جہاز میں جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہاں آگے پڑھیے. میں سمجھتا ہوں کہ سارے آمک میں یہ سب سے مہتوپورن واقع ہے. اس ایک واقع کے اوپر ہماری جیون کی سفلتا نربھر ہے. اچھا میرا ایک نویدن ہے کہ آپ جتنے بھی بھکت یہاں بیٹھے ہیں وہ اس ایک واقع کو پڑھتے جائیں بار بار. کتنے بھکت ہیں؟ 30 بھکت ہیں, تو 30 بار اس واقع کو ہم دہرائیں گے. ٹھیک ہے, جوڑ جوڑ سے آپ بولتے جائیے گا, ایسے لائن سے بولتے جائیے. نہیں پھر شروع کیجیے. آپ ویسے جو سن رہے ہیں آپ اس لائن کو بار بار پڑھتے جائیے تاکہ پتھر میں جو لکیر ہوتی ہے جیسے ہمارے ہردے پہ وہ بیٹھ جائے. ہاں جی हाँ जी बोलिए ये क्यों महत्वपूर्ण है कि क्यों इतना जोर हम इस वाक्य पे दे रहे हैं? ये एक वाक्य है, हमारी सारी जीवन की सफलता इस एक वाक्य के ऊपर निर्भर हो सकती है। हमारी मनोवृत्ति, अंग्रेजी में से एटीट्यूड कहते हैं, मनोवृत्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपने कई बार ये साधारण उदाहरण सुने होंगे, कोई व्यक्ति देखता है कि ग्लास में पानी आधा भरा है, कोई कहता आधा खाली है। हमारी दृष्टि क्या है? जब हम मनोवृत्ति कहते हैं, इसके लिए और भी शब्द हम कह सकते हैं, दृष्टि, या हमारी दृष्टि क्या, हमारा भाव क्या है, कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भौतिक उदाहरण आपको सुनाएं, छोटे से उदाहरण, पहले भी हम सुना चुके हैं। एक जूता बनाने वाला कारखाना था, उस कारखाने ने, जो मालिक था, उसने अपने व्यक्ति को भेजा, तुम अफ्रीका में जाओ और वहां देखो कि हमारे जूते बेचने के लिए कोई संभावना है कि नहीं है। तो व्यक्ति वहां गया और उसने वहां से रिपोर्ट भेजा कि यहां तो सब बिना जूते चप्पल के घूमते हैं, यहां कोई संभावना नहीं है, भूल जाओ, यहां कोई आदत ही नहीं है उनको, ऐसे कोई प्रथा ही नहीं है कि जूते चप्पल पहनने चाहिए, सब नंगे पैर ही घूमते हैं, इसलिए यहां हमारे कंपनी के लिए कोई मुनाफा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, केवल नुकसान है यहां। फिर कंपनी ने दूसरे आदमी को भेजा, दूसरा आदमी गया, उसने वापस रिपोर्ट भेजा, यहां लाखों असीमित जूते हम बेच सकते हैं क्योंकि यहां कोई नहीं पहनता, इसलिए सबको हम पहना सकते हैं जूते। दोनों की मनोवृत्ति, दोनों की भावना, दोनों की चेतना, दोनों की दृष्टि देखिए कितनी अलग है। देख वही चीज को है रहे हैं दोनों, लेकिन देखने का ढंग कितना अलग है। उसी प्रकार से हम किसी व्यक्ति में भी दोष देखते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कोई अच्छे गुण देखता है ना? तो हमारी एटीट्यूड, कृष्ण भक्ति को हम क्या समझ रहे हैं, ये पथ क्या है, ये भक्ति मार्ग है क्या, हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, कैसे हमें करना चाहिए, स्थूल बातें सूक्ष्म बातें दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति मार्ग अन्य योग मार्गों से अलग है क्योंकि इसमें हम समझते हैं दो महत्वपूर्ण अंतर हो सकते हैं। वैसे तो अंतर कई हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण अंतर ये हैं। सर्वप्रथम कि केवल शुद्ध भक्त ही पूरी तरह से निष्काम होता है, चाहे आप अष्टांग योगी ले लें, ज्ञान योगी ले लें, कर्म योगी, कर्मकांडी ले लें, जितने भी अन्य हैं वो सब सकाम होते हैं। चैतन्य चरितामृत का श्लोक तो आप सबने सुना होगा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकल शांत कृष्ण भक्त निष्काम अतयुग शांत। तो भुक्ति, भुक्ति मतलब जो भोग चाहता है, जो कर्मी है। मुक्ति मतलब जो मुक्ति चाहता है अर्थात ज्ञान योगी। सिद्धि कामी, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी और सिद्धि कामी। सिद्धि कामी मतलब जो अष्टांग योगी है, वो भी कोई सिद्धि चाहता है। ये सब अशांत हैं क्योंकि ये निष्काम नहीं है, सब सकाम है। भले उनकी कामना स्थूल हो या सूक्ष्म हो, परंतु भौतिक है उनकी कामना, इसलिए वो सब अशांत है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त को, जो आदर्श कृष्ण भक्त होता है, कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है, केवल प्रभु की प्रसन्नता, यही एकमात्र उसके मन में धारणा या इच्छा रहती है। मेरी इच्छा नहीं, केवल भगवान की इच्छा। तो भगवान जो चाहते हैं वो हम करेंगे, लेकिन भगवान की इच्छा से अगर कोई भिन्न हमारी इच्छा हो, इसे श्रीमद् भागवत में पृथक भावम कहा गया है, या भिन्न दृक्। पृथक भावम मतलब हमारा भाव कुछ भगवान के इच्छा से, उनके भाव से भिन्न है, पृथक है। तो जैसे ही हमारा भाव या हमारी मति या हमारी इच्छा भगवान से भिन्न हो जाती है, तब हम सकाम बन जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में आने के बाद भी अन्य मार्ग तो सकाम मार्ग है, ये निष्काम पथ है, लेकिन इस निष्काम पथ में होते हुए भी अगर हम सकाम बन गए तो हमारी प्रगति उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो कामनाएं सूक्ष्म सूक्ष्म भी हो सकती हैं भक्ति मार्ग में आने के बाद भी, इसलिए हमें ये अंतर जानना चाहिए कि शुद्ध भक्ति अन्याभिलाषिता शून्यम है ना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये आप भक्ति रसामृत सिंधु में जाके भी पढ़ेंगे। तो ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर ये है कि जो कर्मी ज्ञानी और योगी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, वो अपने बल पे, अपनी योग्यता पे, अपनी बुद्धि आदि पर निर्भर होते हैं, और अपने चुने हुए पथ में सफलता प्राप्त करने के लिए वो अपनी योग्यता बुद्धि बल आदि पर जोर देते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति के पथ में हम जोर किसके ऊपर देते हैं बताइए? कृपा, कृपा के ऊपर। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने प्रयास के ऊपर जोर नहीं देते, अवश्य हमें करना चाहिए, साधन तो करना चाहिए हमें, परंतु जो सच्चा भक्त होता है वो जानता है कि मैं साधन तो कर रहा हूं और मुझे करते रहना चाहिए हृदय से, परंतु अंततः इस साधन की जो सफलता है, जो प्रयोजन है, वो तो केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगा, केवल मेरे साधन से प्राप्त नहीं होगा। केवल मैंने इतने माला कि भगवान आपने अब तक कृष्ण प्रेम क्यों नहीं दिया, ऐसे थोड़ी हो सकता। हम अदालत में केस फाइल करेंगे, इतना लंबा समय हो गया, हम 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, इतनी माला हमने कर ली, एकादशी में निर्जल उपवास कर लिया, ये कर लिया, वो कर ली, इतनी सेवा कर ली, अभी तक कृष्ण प्रेम नहीं आया? नहीं, ये न्याय का विभाग नहीं है, जस्टिस डिपार्टमेंट अदालत नहीं है, ये केवल भगवान की कृपा के ऊपर आधारित है। भगवान जैसा ठीक समझे, जब ठीक समझे, किस तरह से ठीक समझे, वैसे वो हमें भक्ति देंगे, कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। तो दोनों चाहिए हमें, साधन भी चाहिए, परंतु साधन करते हुए भी हमें समझना चाहिए कि केवल मेरे प्रयास से ही कुछ नहीं होने वाला है। प्रयास आवश्यक है, लेकिन प्रयास से अधिक कृपा। तो साधन भी करते समय हमें कृपा याचना करते हुए करना चाहिए। हम माला जब करते हैं तो कभी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं माला कितने अच्छी तरह से कर रहा हूं, मैं दूसरे लोगों से अच्छा माला जप करता हूं या करती हूं, मैं आरती कितनी अच्छी तरह से करता हूं, मैं पुस्तक वितरण कितने अच्छी तरह से करता हूं, मैं शास्त्रों का ज्ञान मुझे अन्यों से अधिक है, मैं अच्छा प्रवचन कर सकता हूं, मैं अच्छा रसोई कर सकता हूं भगवान के लिए, तो इससे भगवान आकर्षित नहीं होते, हमारी कला से, हमारी बुद्धि से, किसी को भले चित्र कोई चित्रकार हो अच्छे चित्र बनाता है, कोई रसोई अच्छी बनाता है स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता है, कोई बुद्धिमान है स्मृति शक्ति अच्छी है प्रवचन अच्छा दे सकता है, लेकिन ये सब भौतिक है अपने आप में। मनोवृत्ति भावना, हमारी भावना कैसी है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो हर चीज हमारी भावना के ऊपर निर्भर है और विशेष करके भक्ति में ये भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। तो इन दोनों को मिलाकर निष्काम भावना और कृपा के ऊपर निर्भर होना ये शरणागति के लक्षण है। शरणागत भाव ये भक्त का होता है। जब भक्त समझ लेता है कि मैं पूरी तरह से भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर हूं और उनके भक्तों की कृपा के ऊपर निर्भर हूं, और जब हम ये भी जानते हैं कि मुझे भगवान से कोई भी भौतिक चीज नहीं मांगनी चाहिए, तो हम पूरी तरह से शरण स्वीकार करते हैं भगवान का। शरणागति ये भी एक बड़ा विषय है। शरणागति हरिनाम चिंतामणि में श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भक्तों के या वैष्णवों के अनेक गुण होते हैं। भक्तों के गुणों का विभाजन दो श्रेणियों में किया जा सकता है। एक को कहते हैं स्वरूप लक्षण और दूसरे हैं तटस्थ लक्षण। तो एक वैष्णव के, एक शुद्ध वैष्णव का स्वरूप लक्षण क्या होता है? शरणागति। बस ये एक लक्षण है, शुद्ध वैष्णव का स्वरूप लक्षण है शरणागति। जिस लक्षण के द्वारा शुद्ध भक्त पहचाना जा सकता है और इसके बिना वो शुद्ध भक्त हो ही नहीं सकता। शरणागति से आगे भी बहुत कुछ करना है, परंतु अगर शरणागति नहीं होगी तो फिर वो आगे प्रगति नहीं कर पाएगा, फिर आगे बात करने की ही आवश्यकता नहीं है। जब शरणागति आएगी अर्थात जब स्वरूप लक्षण होगा, तब जितने भी और अन्य वैष्णव गुण हैं वो सब तटस्थ हैं। जैसे समझ लीजिए जितने भी 26 गुण हैं वैष्णवों के, वो सब उसमें आ जाएंगे, शरणागति के ऊपर आधारित हैं। कृपालु होना, कवि होना, नम्र होना, सहनशील होना, सब जितने भी सारे अच्छे अच्छे वैष्णव के गुण हैं वो सब इस एक स्वरूप लक्षण के ऊपर आधारित हैं। शरणागत होने से वैष्णव के अंदर ये समस्त गुण आ जाते हैं। भागवत के भी कई श्लोक हैं इसके प्रमाण में, तो खैर ये विषय तो अलग है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंग्रेजी में कहते कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, और उसी बात को यहां पर कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। इसलिए ये मनोवृत्ति इस शब्द के ऊपर हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी आगे पढ़िएगा।
कृष्ण भावनामृत के अनुयायी को आदर्श गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतः गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में तो प्रत्येक मंदिर के संचालक की यही कर्तव्य होती है, जो कोई कृष्ण का परम भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी होना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रिया और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर देता तब तक गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशानुक्त नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री गुरु गोस्वामी ने हमें प्रदान किया।
ठीक है, तो गोस्वामी शब्द का अर्थ बताइएगा। गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब प्रभु, तो गोस्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों का स्वामी का क्या मतलब है? जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है। और इसके विपरीत क्या है? गोदास। गोदास और गोस्वामी। तो हमें क्या होना चाहिए भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए? गोस्वामी। वैसे हर एक वैष्णव गोस्वामी कहलाता है। जो भगवान की भक्ति में दृढ़ता से लगा हुआ है, इंद्रियों को वश में करना तो वो कर सकता है आसानी से। परंतु प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि वृंदावन में ये गोस्वामी एक पद है जो गोस्वामी परिवार में जन्म लेता है वो गोस्वामी कहलाता है, परंतु वास्तव में गोस्वामी शब्द का अर्थ क्या है कि जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो रूप गोस्वामी ने उपदेश अमृत हमें किस लिए दिया है, यहां पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, पहले क्या बनना चाहिए, पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उपदेशामृत नामक ग्रंथ नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले गोस्वामी बनना, लेकिन गोस्वामी बन के क्या करना है, शुद्ध भक्त बनना है, शुद्ध भक्त बन के अपना जीवन सफल करना है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने हमें ये उपदेशामृत ग्रंथ दिया है। हाँ जी आगे पढ़िए।
उन्होंने अनेक लिखी है तथा भक्ति श्यामित सिंधु विदर्भ माधव तथा ललित माधव, लेकिन श्री उपदेशामृत नव दीक्षित भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेशों को कठोरता से पालन करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम हो जाएगा।
तो कठोरता से पालन करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि क्या होगा, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। नियमों का पालन, जिन नियमों का वर्णन रूप गोस्वामी पाद ने यहां किया हुआ है, इन नियमों का पालन हम कठोरता से करेंगे, गंभीरता पूर्वक रूप गोस्वामी के उपदेशों को स्वीकार करेंगे, तो यहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम हमारे लिए हो जाएगा। तो ये है आमुक। तो ये आमुक के जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहां पर संक्षेप में केवल हमने उठाया लिया है। हाँ तो कोई पढ़िएगा आमुक के, ये आमुक का सार समझ लीजिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है, ठीक है।
श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझने के लिए हमें श्री गोस्वामी का अत्यंत गंभीरतापूर्वक अनुसरण करना चाहिए।
सो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में प्रवेश करने के लिए, उनके आंदोलन को समझने के लिए हमें षड गोस्वामियों के शिक्षाओं का, उनके पदचिन्हों का हमें अनुसरण करना चाहिए गंभीरतापूर्वक।
पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है।
तो उपदेश रूप गोस्वामी ने ये उपदेशामृत ग्रंथ क्यों लिखा है, इसका कारण यह है, ताकि हम पहले गोस्वामी होकर आगे चल के हम शुद्ध भक्त बन जाएं और इस प्रकार हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। कृपया इसको घुमाएंगे आप। हाँ आगे पढ़िए। हमें भी अपने आप को क्या समझना चाहिए, नया भक्त ही समझना चाहिए। कभी कभी हमारे संस्था में सीनियर डिवोटी होता है ना, ये सीनियर डिवोटी हैं, हम सीनियर डिवोटी बन गए हैं, नए हैं। एक दृष्टि से ठीक है, हमें तो इस मन में याद रखना चाहिए कि हाँ ये हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन अपने आप को कभी सीनियर डिवोटी या वरिष्ठ भक्त नहीं मानना चाहिए। हमें समझना चाहिए हम तो हैं नए भक्त ही, हम तो हैं नौसुखिया। वास्तव में गोलोक वृंदावन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम सब बिल्कुल नौसुखिया हैं, इसलिए हम सबके लिए ये उपदेशामृत ग्रंथ है। और अंततः जो सब जो हमारे दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वाक्य इस आमुख का है वो क्या है,
कृष्ण भावनामृत में प्रकट हो जाए कि मनोवृत्ति
कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अभी पहले श्लोक हम अगली बार से शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले एक सूची देना चाहते हैं सारे उपदेशामृत के। तो कृपया इसको, यहां अभी तीन चार्ट हैं जो ऐसे लगाने होंगे, यहां चिपकाने के लिए भी कुछ है क्या? है, इन तीन को फाड़ के यहां एक के बाद एक ऐसे यहां लगा दीजिए आप। उपदेशामृत में 11 श्लोक हैं, तो इन 11 श्लोकों का विश्लेषण भक्ति विनोद ठाकुर ने इस प्रकार से किया है, जिसको आप अभी आप देखेंगे। यहां ऐसे लगाइए ताकि सभी लोग देख सकें, सभी भक्त देख सकें। वैसे जहां तक मुझे पता है, उपदेशामृत की टीकाएं हमारे तीन आचार्यों ने लिखी हैं। एक है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, दूसरे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और तीसरे हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की टीका तो हम पढ़ ही रहे हैं, और इन टीकाओं में उन्होंने जगह जगह पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुवृत्ति टीका की बात भी की है। तो यहां जो एक सूची है, बाहरी दृष्टि से पूर्ण उपदेश अमृत का विचार है, वो भक्ति विनोद ठाकुर के टीका पर निर्भर है। यहां सबको दिखाई नहीं देगा, कोना दिखाई नहीं देगा। अच्छा, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, हाँ, एक ऊपर नीचे ऐसे कर लीजिए। तीन है तो इसलिए आपको जगह छोड़ना चाहिए, तो चेयर पे चढ़ के आप कर सकते हैं, चेयर पे चढ़, क्योंकि तीन होंगे ना, और ऊपर और ऊपर, तीन चार्ट हैं इसलिए मैं एक साथ में हूं तो अच्छा, चेयर के ऊपर खड़े होकर आप। आप सब पढ़ पा रहे हैं ना? उसके ऊपर ही लगाइए, चिपकाइए उस कागज के ऊपर ही, ताकि वो ऊपर नहीं आए। हाँ, उड़ेगा। और तीसरा चार्ट भी है, इसके नीचे लगाइए। और ये चार्ट बंद कर दीजिए। नहीं तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। वैसे ये एक के बाद एक ऐसे होते तो आपको और स्पष्ट रूप से पता चलता। इनको आप लिख सकते हैं, 5 मिनट आपको लगेंगे ये लिखने के लिए, आप लिख लीजिए। आप चाहें तो आपके नोटबुक में इस प्रकार से लिख लीजिए, ऐसे ऊपर से नीचे नहीं, बाएं से दाएं, लंबे पेज में ऐसे आप लिख लें तो एक के बाद एक आपको अच्छा लगेगा। हाँ, किताब को ऐसे नहीं, ऐसे रख के लिखिए आप, ठीक है ना? तो इसमें सारे एक के बाद एक आ जाएंगे, एक पहले श्लोक से 11वें श्लोक तक। धन्यवाद। उदाहरण से पहला श्लोक, उसके नीचे वाचो वेगम, मतलब श्लोक का पहला अक्षर या पहले दो अक्षर, बस दो शब्द लिखे हैं, उसके नीचे जो नीले रंग में लिखा है वो बंगाली में है, जो भक्तिवनोद ठाकुर के शब्दों में लिखा है। इसलिए आप सोचेंगे ये भाषा कौन सी है, ये बंगाली है भक्तिवनोद ठाकुर की, परंतु हिंदी की तरह ही है, तो आप समझ पाएंगे। पहला श्लोक, वाचो वेगम त्रिदंडी गोस्वामीर लक्षण। मध्यम अधिकारी गोस्वामी का बाह्य व्यवहार व भक्ति के नियम। बाह्य व्यवहार व भक्ति के नियम। जी और दो से चार, मध्यम अधिकारी गोस्वामी का बाह्य व्यवहार व भक्ति के नियम। राधा कुंड स्नानीर सौभाग्य पराकाष्ठा, स्नानीर जो स्नान करता है, स्नानी का स्नानी ये बंगाली है ना, तो स्नानीर है। स्नान करने, स्नानी मतलब जो स्नान करता है, स्नानीर मतलब स्नान करने वाले का। ठीक है, आप सबने लिख लिया। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण, वो श्लोक है, इसलिए श्लोक के केवल पहले शब्द बताए। तन्नाम रूप, आप ये भी लिख सकते हैं ऊपर कि ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विभाजन इस प्रकार से किया गया है, आपके खाते में ये भी आप लिख लीजिए। कौन सा नंबर? कृष्णस्य उच्चैः, कृष्णस्य, कृष्णस्य उच्चैः श्लोक की शुरुआत है, वो पहला शब्द है श्लोक का। आप सब ने लिख लिया? ठीक है, तो सबसे पहला श्लोक वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो इसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, इस श्लोक का विषय क्या है? त्रिदंडी गोस्वामीर लक्षण, अर्थात एक त्रिदंडी गोस्वामी के लक्षण। गोस्वामी मतलब जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, आत्मसंयमी मध्यम अधिकारी के लक्षण। तो मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इसकी चर्चा हम आगे चल के भी करेंगे और भक्ति रसामृत सिंधु में भी इस विषय की चर्चा बड़ी विस्तार में होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा श्लोक अत्याहार प्रयासश्च इत्यादि, और इसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भक्ति प्रतिकूल षड् गुण, अर्थात भक्ति के लिए वो कौन से छह चीजें हैं जो कि प्रतिकूल हैं। तीसरे श्लोक अर्थात उत्साहान निश्चयात धैर्यात आदि, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भक्तिर अनुकूल षड गुण, भक्ति के लिए वो कौन से छह गुण हैं जो कि अनुकूल हैं। फिर चौथे श्लोक में ददाति प्रतिगृणाति आदि षड्विध प्रीतिर लक्षण, प्रीति भक्तों के बीच में जो प्रेम के छह लक्षण, ये विषय है चौथे श्लोक का। तो दूसरे तीसरे और चौथे श्लोक में वास्तव में जो भी वर्णन है वो एक मध्यम अधिकारी गोस्वामी का बाह्य व्यवहार व भक्ति के नियम का वर्णन है। एक मध्यम अधिकारी त्रिदंडी गोस्वामी का व्यवहार कैसे होता है, वो कौन से नियमों का पालन करता है, इन सब का वर्णन दूसरे तीसरे और चौथे श्लोक में पाया जाता है। प्रथम श्लोक में केवल त्रिदंडी गोस्वामी के लक्षण बताए गए हैं, उल्लेख उनका किया हुआ है। फिर थोड़ा बहुत वर्णन दूसरे तीसरे और चौथे श्लोक में पाया जाता है। हाँ हाँ, यहां तक कि हम देखेंगे कि आठवें श्लोक तक केवल मध्यम अधिकारी की ही चर्चा चल रही है। फिर पांचवें से आठवें श्लोक, मतलब पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इस श्लोक में ये रूप गोस्वामी बताएंगे कि मध्यम अधिकारी गोस्वामी की दृष्टि कैसी होती है और उनकी आंतरिक उनका विकास कैसे होता है। तो पांचवें श्लोक में कृष्णेति, जिसका प्रथम शब्द, ये सब श्लोक एक एक करके हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मध्यम अधिकारी त्रिविध वैष्णव सेवन, एक मध्यम अधिकारी किस प्रकार से, तीन प्रकार से वैष्णवों की सेवा करता है। तीन तरह के वैष्णवों की सेवा एक मध्यम अधिकारी कैसे करते हैं, इसका वर्णन पांचवें श्लोक में है। छठा श्लोक, अप्राकृत वैष्णवे प्राकृत दृष्टि निषिद्ध। अप्राकृत वैष्णव मतलब एक वैष्णव वो प्राकृत जगत का साधारण आदमी नहीं है, ऐसे नहीं समझना चाहिए। वो अप्राकृत है मतलब आध्यात्मिक है। तो वैष्णवे मतलब ऐसे वैष्णव को, एक अवैष्णव, एक अप्राकृत वैष्णव को किस दृष्टि से देखना, प्राकृत दृष्टि से देखना, मतलब साधारण भौतिक दृष्टि से देखना निषिद्ध, ये निषिद्ध है। तो इसका वर्णन छठे श्लोक में रूप गोस्वामी करते हैं। स्यात् कृष्ण नाम, तो श्लोक सातवा, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अविद्या विनाश ओ मतलब और एवं, अविद्या विनाश ओ कृष्ण नामे रुचि अनुशीलनेर प्रणाली। तो उस प्रणाली का वर्णन है जिसमें अविद्या का विनाश और कृष्ण के नाम में रुचि का अनुशीलन हो, इस प्रणाली का वर्णन है। अविद्या विनाश और कृष्ण नाम में रुचि। आठवें श्लोक में तन्नाम रूप चरितादि इत्यादि, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, श्री व्रज भजन प्रणाली, वृंदावन का भजन कैसे होता है। तो यहां तक मध्यम अधिकारी का वर्णन है इस आठवें श्लोक तक। इसके बाद नौवें और दसवें श्लोक में आराध्य स्थल एवं व्यक्तियों की श्रृंखला, इसका वर्णन रूप गोस्वामी करने वाले हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नौवें श्लोक में क्या वर्णन है, भजनीय स्थल मध्य सर्वश्रेष्ठ, जितने भी भजनीय स्थल हैं हमारे लिए आराध्य स्थल हैं, महत्वपूर्ण धाम तीर्थ स्थान आदि हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, इसका वर्णन यहां पे है इस श्लोक में। फिर दसवें श्लोक में कर्मेभ्य इत्यादि, भजन कार्य मध्य सर्वश्रेष्ठ, भजनकारी मतलब भजन करने वाला, भजन करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, कौन है, इसका वर्णन दसवें श्लोक में हम पाएंगे। और फिर अंतिम श्लोक जो है कृष्णस्योच्चैः राधा कुंड स्नानीर सौभाग्य पराकाष्ठा, कि राधा कुंड में स्नान करने वाले का सौभाग्य क्या है, इसका वर्णन इस अंतिम श्लोक में पाया जाता है। और इसमें पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा क्या है, ऊंचा कार्य क्या है, इसका वर्णन इस 11वें श्लोक में पाया जाता है। तो ये उपदेशामृत की सूची है, लेकिन और एक दृष्टि से भी इसको भी अगर आप यहां कोई चिपका सकते हैं तो अच्छा रहेगा, अभी इसको भी फाड़ना होगा। भक्ति रसामृत सिंधु में सर्वप्रथम श्री रूप गोस्वामी उत्तमा भक्ति की परिभाषा देते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्य निकृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो यह उत्तमा भक्ति के दो भाग हैं, एक है साधन भक्ति और दूसरा है साध्य भक्ति। साधन भक्ति के दो अंग हैं, वैधि साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। उधर साध्य भक्ति के दो अंग हैं, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो वास्तव में जो भाव भक्ति है वो पूरी तरह से साध्य भक्ति नहीं है, वो एक तीसरी ही श्रेणी है। जैसे संध्या न तो दिन है न रात है, उसी प्रकार से भाव भक्ति ये न साधन भक्ति है और न साध्य भक्ति है, ये बीच में है। बस साध्य भक्ति की प्राप्ति होने ही वाली है शीघ्र ही। ऐसे अवस्था को भाव भक्ति कहते हैं। जैसे संध्या, अभी संध्या काल होने ही वाला है, तो संध्या काल में क्या होता है, ये दिन भी नहीं है, दिन समाप्त होने जा रहा है, दिन समाप्त हो चुका है और रात्रि अभी शुरू नहीं हुई है, बस होने ही वाली है। तो ये भाव भक्ति की अवस्था है कि वैधि भक्ति के ऊपर तो आ गए लेकिन पूरे प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए भाव भक्ति। लेकिन फिर भी हमने यहां भाव भक्ति को भी साथ में ही रखा हुआ है। तो साधन भक्ति में है वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, और साध्य भक्ति में भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो पहले 7 श्लोकों में वैधि साधन भक्ति का वर्णन है, 8वें श्लोक में रागानुगा भक्ति का वर्णन है, और फिर 9वें 10वें और 11वें श्लोक में साध्य भक्ति अर्थात भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति का वर्णन पाया जाता है। वैधि भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है, साधन भक्ति क्या है, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये सब क्या हैं, ये विस्तार में आप भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन करते समय आप पढ़ेंगे। तो देखिए अंत में सीधे वैधि भक्ति से लेकर प्रेमा भक्ति की अवस्था तक यहां रूप गोस्वामी पाद ने चर्चा की है। ठीक है, तो क्योंकि वैसे समय क्या है 4:30 से, तो क्योंकि हम रूप गोस्वामी और षड गोस्वामियों के पद चिन्हों में चल रहे हैं, इसलिए हमने सोचा आज के दिन विशेष करके षड गोस्वामी अष्टकम हम ये गाएंगे, षड गोस्वामियों की चरण कमलों में प्रार्थना करेंगे, कृपा याचना करेंगे कि वो उनकी शिक्षाओं को समझने की बुद्धि क्षमता आदि हमें प्रदान करें, और समझने के बाद हम इन शिक्षाओं को हमारे जीवन में कठोरता से उतारें, पालन करें, ये प्रार्थना हम करें।